जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज के तिरुभाव दिवस पर एवं पुस्तक वितरण मैराथन के समय 22 नवंबर 2015 में इस्कॉन नई दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश में दिया गया।
गोपी जन बाला भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आप सब कल रथ यात्रा में भी आए थे, रथ यात्रा में कौन कौन आए थे कब? सब नहीं, ये माइक ठीक नहीं है। रथ यात्रा जैसे आप जानते हो, हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से हो सकता है। रथ यात्रा जैसे आप जानते हो बहुत ही प्राचीन उत्सव है, और आज प्रभुपाद के प्रयास से विश्व के कोने कोने में भगवान रथ है, भगवान की यात्रा निकलती है। आपके दिल्ली शहर में ही मेरे ख्याल से कम 9 या 10 रथ यात्रा हर साल निकलती है। माइक थोड़ा जोर से कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हो ये बड़ा शुभ महीना है। इस महीने को क्या कहा जाता है? कार्तिक या दामोदर का महीना। और ये कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है 25 तारीख को। तो 12 महीनों में भक्तों के लिए कार्तिक का महीना सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, और कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में अगर आप थोड़ी भी सेवा करोगे उसका 1000 गुना लाभ मिलता है। और कार्तिक के महीने में हमें प्रयास, आप सबको पीछे सुनाई दे रहा है? हाँ, कार्तिक के महीने में हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के प्रति हम समर्पण बढ़ाएं। इसलिए आप देखते हो वृंदावन में हजारों भक्त रोज जाते हैं, और कार्तिक के महीने में कई भक्त हैं जो ये निर्णय करते हैं हमें जप वाला पद ज़्यादा करना है, सेवा ज़्यादा करनी है। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए अगर कार्तिक के महीने में हमने सेवा ज़्यादा की है तो बाकी 11 महीने छुट्टी ले सकते हैं। कार्तिक के महीने का भाव ये होना चाहिए कि हम कार्तिक के महीने में भक्ति सेवा बढ़ाएंगे और सारा साल सेवा कर देंगे। तो कार्तिक के महीने में कई प्रसिद्ध उत्सव भी बीते हैं। जैसे कार्तिक के महीने में हम भगवान की दामोदर लीला बीती है। दामोदर लीला में आप देखते हो कि यशोदा माता ने प्रयास किया था भगवान को रस्सी से बांधने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें बकायदा शिकायत दी थी, आपका बेटा आकर हमारे घर से मक्खन चुरा रहा है। और यशोदा माता सोचती थी मेरा बेटा तुम्हारे घर में आकर मक्खन क्यों चुराए? नंद महाराज के पास कितनी गायें थी? 9 लाख गाय, और इनमें से कई गायें सुगंधित दूध देती थी। आजकल तो अगर आपको कोई सुगंध पैदा करना है तो फ्लेवर डालना पड़ता है। तो ये कुदरती गायों को सुगंधित घास खिलाया जाता था और सुगंधित दूध निकलता था। तो भगवान गोपियों के घर से मक्खन जरूर चुराते थे पर उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया। एक समय एक गोपी यमुना नदी गई थी स्नान करने, तो जल्दी आ गई तो भगवान को पकड़ लिया मक्खन खाते हुए। तो यशोदा उस गोपी ने कहा कि यशोदा माता हमेशा कहती है मुझे कोई प्रमाण दो कि मेरा बेटा तुम्हारे घर से आकर मक्खन चुरा रहा है, आज मैंने रेड हैंडेड पकड़ लिया भगवान को मक्खन चुरा दे, चलो तुम्हारी माँ के पास। तो बेटे के हाथ को पकड़ कर घसीर कर ले जा रही थी और भगवान के पीछे वो गोपी का अपना बेटा था। भगवान ने बड़ी चलाकी से अपना हाथ तो निकाल लिया और उनके बेटे का हाथ माँ को पकड़ा दिया और माँ को पता ही नहीं लगा। तो माँ जब पहुंची यशोदा माता के पास तो कहने लगी, तुम कहते हो हमेशा प्रमाण लाओ प्रमाण लाओ, ये लो प्रमाण, तो ये लो देखो तुम्हारे बेटे को पकड़ा मैंने मक्खन का दे। तो यशोदा माता ने कहा मेरा बेटा थोड़ी है, मेरा बेटा तो ये मक्खन खा रहा है। तो इस वक्त भगवान कहने एक लीलाएं थी पर यशोदा माता ने बहुत प्रयास किया भगवान को समझने के लिए, पकड़ने के लिए और फिर बांधने के लिए। और माता ने सोचा बांध लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मारूंगी तो वो भाग जाएगा घर से, कहाँ जाएगा फिर ढूंढ के कहाँ से लाएंगे। पर वो बांध नहीं पाए, है ना, कई रस्सियों को जोड़ा। तो हमारे आचार्यों का यह कहना है ये जो दो रस्सी छोटी निकलती थी उसके पीछे बड़ा गहरा संदेश है। संदेश ये है कि अगर आप भगवान को समझना चाहो तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, ये नहीं कि बैठे बैठे आपको भगवान का दर्शन चाहिए और दर्शन मिल जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे यू वॉन्ट टू सी गॉड, यू हैव द आईज टू सी गॉड, आप भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान को देखने की योग्यता है आप में, पहले वो योग्यता होनी चाहिए। हमें अपने अशुद्ध मन इंद्रियों को शुद्ध बनाना है, वो संभव है भक्ति के माध्यम से। तो एक रस्सी के द्वारा एक उंगली छोटी होने का तो भाव है कि प्रयास करोगे तो फिर भगवान की कृपा से भगवान को समझ पाओगे। भगवान को समझना इतना सरल कार्य नहीं है, प्रयास करोगे तो ही। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के द्वारा ये शुद्ध संदेश दिया जा रहा है। क्या है शुद्ध संदेश? कि भक्ति योग एक साधन है जिसके द्वारा अपर भगवान को आकर्षित कर सकते हो। और इस दामोदर के महीने में कई प्रसिद्ध लीलाएं गुजरी हैं, जैसे कि एक और प्रसिद्ध लीला थी गोवर्धन लीला, जिससे आप सब परिचित हो। हाँ, गोवर्धन लीला भी भगवान की निकली बीती थी इस दामोदर के महीने में। नंद महाराज और दूसरे ब्रिजवासी इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, हर साल इंद्र यज्ञ करते थे इस भावना के साथ कि इंद्र जी को प्रसन्न करेंगे तो हमें जल प्राप्त होगा, किसानों के लिए तो जल बारिश की बहुत आवश्यकता है। किसानों के लिए क्या, सबके लिए? आजकल आप कलयुग में क्या देख रहे हो, इंद्र यज्ञ नहीं हो रहा, कृष्ण यज्ञ नहीं हो रहा और जो आवश्यकता है वो कम होते जा रही है, खास करके पानी। आप मोटर बगैर रह सकते हो, बड़े मकान के बिना रह सकते हो, पानी बिना रह सकते हो। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब तुम यज्ञ करोगे। यज्ञ का अर्थ है भगवान की शिक्षा का पालन। आज आप समाज में क्या देखते हो, यज्ञ का संभाव ही लोगों के मन में नहीं है, और अगर यज्ञ का भाव हो भी तो नाम के लिए पंडित जी को बुला लिया, यज्ञ कर दिया। तो यज्ञ का अर्थ है भक्ति की विधियों का पालन करना। जब हम भक्ति की विधियों का पालन करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है, जो आपकी आवश्यकता है उनकी प्राप्ति होती है। और जब हम प्रकृति जब हम यज्ञ का पालन नहीं करते तो प्रकृति क्या करती है, स्ट्राइक में जाती है। आप जानते हो स्ट्राइक, हम काम नहीं करेंगे, प्रकृति कहती है हम साथ नहीं देंगे। तो ये इसका परिणाम कैसे अनुभव होता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा हो जाता है। जैसे इस समय अमेरिका के भी कई स्थानों में, आपने कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा, जहाँ हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, तो कैलिफोर्निया में भी 3 साल से बारिश नहीं आई, 3 साल से। जब प्रकृति जब अब यह धर्म के नियमों का पालन नहीं करो तो यह परिणाम हो भुगतना पड़ता है। तो नंद महाराज इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, किसान थे, उन्हें पता था कि बारिश के बिना हम खेती सफलता प्राप्त नहीं होगी। भगवान चाहते थे इंद्र यज्ञ रोका जाए, और भगवान के कहने पर उन्होंने वही यज्ञ इंद्र की खुशी के लिए तैयार किया था, भगवान को अर्पण कर दिया गोवर्धन पर्वत को। भगवान ब्राह्मणों की सुरक्षा करते हैं और गायों की। और इसी धामदौड़ के महीने में भगवान ने एक और अद्भुत लीला प्रकट की थी, वो कौन सी थी, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर, और 1-2 मिनट के लिए नहीं। आप जब बोझा उठाते हो तो थोड़ी देर दाएं हाथ में पकड़ते हो, फिर बाएं हाथ में डालते हो, फिर दाएं हाथ में डालते हो, फिर किसको कहते हो सहयोग दो आकर। पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अकेले उठाया, और उस समय इंद्र के क्रोध के कारण इतनी तेजी से बारिश बरस रही थी कि 1 पानी का बूंद खंभे जितना भारी था। ब्रजवासियों को डर था शायद ये पर्वत गिर नहीं जाए उनके हाथों से। भगवान ने क्या कहा, घबराओ मत, नहीं गिरेगा। और सारे ब्रजवासी भगवान के चेहरे को देख रहे थे, और इस कारण नाव ने भौतिक भूख लगी न प्यास। अब भौतिक संसार में हम सब तरसते हैं किसी न किसी सुविधा के लिए। हम सोचते हैं अगर ये सुख प्राप्त हो जाए, ये सुविधा प्राप्त हो जाए, तो हमारी सब समस्या हल हो जाएगी। पर भौतिक संसार का नियम यह है, चाहे आपको कितनी भी सफलता प्राप्त हो जाए, चाहे आप अंबानी या टाटा भी बन जाओ, आप भौतिक संसार में केवल निराश ही रहोगे, और सब चीज जो है अस्थाई है। भगवान कहते हैं भौतिक जगत के 2 नियम हैं, दुखालयम अशाश्वतम, एक तरह से दुखी दुख, दूसरी तरह से अस्थाई। भगवान की गोवर्धन लीला भी निकली थी इसी महीने। इसी प्रकार कुछ दिन पहले हमने गोपाष्टमी भी मनाई थी, जबकि नंद महाराज ने 2 बेटों को जिम्मेदारी दी, वहाँ 5 साल के हो गए थे। अब तुम गायों को, पहले तो वो बछड़ों की देखभाल करते थे, अब तुम गायों की देखभाल भी कर सकते हो। हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार 7 माताओं में 1 माता गाय की नहीं जाती है, और गाय की सुरक्षा अवश्य कार्य है। गाय हमारी 7 माता में एक है। आजकल भारत में देखते हो कि लोगों ने इस इशू का पॉलिटिक्स बना दिया है, और अखबारों में हमने पढ़ा अगर हम गाय की हत्या बंद करेंगे तो हजारों लोगों की नौकरी चले जाएगी, क्योंकि इनकी आमदन होती है ये चमड़े को बेचकर, जूते वगैरह बनाकर। तो आप इन लोगों को कहो आपको गाय की हत्या करने में डर नहीं, आप अपने बच्चों की हत्या क्यों नहीं करते कमाने के लिए। तो गाय की सुरक्षा मानव समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। गाय खाने के लिए केवल घास लेती है और बदले में आपको दूध देती है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि केवल दूध पर निर्भर रहते थे, और इस कार्तिक के महीने में ही श्री प्रभुपाद जी भी अप्रकट हुए थे। प्रभुपाद जी के तीर्थवापसी थी, हमने पिछले इतवार को मनाई थी सारे विश्व में। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, विश्व के हर कोने में यह हरिनाम पहुंचेगा, और प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे इस भविष्यवाणी को सफल बनाने के लिए। आपको पता होगा ये साल हम इस्कॉन की गोल्डन जुबली मनाने को कहा गया था। इस साल हम इस्कॉन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। आज से 50 साल पूर्व अगस्त 13, 1965 को प्रभुपाद चले थे भारत से अमेरिका के लिए। प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने 1921 में आदेश दिया था, तुम पढ़े लिखे युवक हो, भेजाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आनिया। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी पृथ्वी दे आज जगत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो विभोर नाम, विश्व के हर कोने में यही नाम पहुंचेगा। तो हमारे आचार्यों ने बहुत प्रयास किया इसे सफल बनाने के लिए, और भक्ति सिद्धांत जी ने पहली मुलाकात में ही पहचान लिया जब वो प्रभुपाद जी से मिले कि ये है वो युवक जो महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा कर सकता है। तो प्रभुपाद जी को लगभग 40 साल 1921 में आदेश दिया था, और 1965 में लगभग 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी भारत से निकले थे एक कार्गो शिप में केवल 40 रुपए के साथ। आप तो 40 रुपए के साथ दफ्तर भी नहीं जा रहे रोज, और प्रभुपाद जी निकले थे भारत से बिना किसी जान पहचान के। लोगों ने कहा स्वामी जी आप तो मर जाओगे वहां जाकर, आप कभी विदेश में नहीं गए, कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, आप कैसे जाओगे। पर प्रभुपाद जी के मन में एक ही भाव था, ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है, और उनके आदेश के अनुसार उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद आरंभ किया, ग्रंथों का प्रकाशन आरंभ किया। आपके दिल्ली शहर में प्रभुपाद जी खुद जाते थे ग्रंथों का वितरण करने के लिए, और फिर 1965 में एक कार्गो जहाज में, कार्गो जहाज मतलब जैसे मालगाड़ी होती है ना वैसा जहाज, प्रभुपाद जी चले अमेरिका के ओर। और प्रभुपाद जी ने कहा ये जो मंदिर है, ये मंदिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए बॉम्बे में, लंदन में, न्यूयॉर्क में है, ये है वैकुंठ। प्रभुपाद जी ने विश्व के कोने कोने में वैकुंठ की स्थापना की। आज विश्व के कोने कोने में इस्कॉन के मंदिर हैं। आज इस समय सारे विश्व में इस्कॉन संस्था के 602 मंदिर हैं सारे विश्व में, लगभग 125 मंदिर हैं भारत में, बाकी मंदिर विदेश में। जो प्रभुपाद जी के प्रयास से आज 602 मंदिर चल रहे हैं सारे विश्व में, और 65 फार्म्स हैं, फार्म गौशाला 65 विश्व के कोने कोने में, और 54 एजुकेशनल कॉलेजेस हैं, और 110 गोविंदा रेस्टोरेंट हैं सारे विश्व में। तो प्रभुपाद जी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी सफल हुई है, और कार्तिक के महीने में ही प्रभुपाद जी भी अप्रकट हुए थे। कार्तिक के महीने में एक और महान संत अप्रकट हुए थे जिनका नाम है गौर किशोरदास बाबू जी महाराज। गौर किशोरदास बाबू जी महाराज जी की, तो आज के दिन हम गौर किशोरदास बाबू जी महाराज जी का तिरुभाव तिथि मना रहे हैं। आविर्भाव का अर्थ होता है जबकि कोई महान संत प्रकट होता है, तिरुभाव का अर्थ होता है जब वो अप्रकट होता है। महान संतों के विषय में प्रकट होना अप्रकट होना दोनों का ही उत्साह से हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, भगवान की इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं, और भगवान की इच्छा के अनुसार अप्रकट होते हैं। पर जब वो हमारे नेत्रों से अप्रकट होते हैं, उसका यह मतलब नहीं कि वो मर गए, ये मतलब है कि भगवान की इच्छा के अनुसार किसी और स्थान में भगवान का संदेश का प्रचार करें। तो गौर किशोरदास बाबा जी बहुत ही ऊंची कोटि के संत थे। 30 साल उन्होंने भजन किया वृंदावन धाम में, रोज 128 माला रोज करते थे, कितनी 2 लाख बार जाप करते थे रोज, सारा दिन जाप करते थे। खाने के लिए यमुना नदी की जो मिट्टी है उसको खा लेते थे, या मधुकरी करके, मधुकरी का अर्थ है कि घरों में जाकर भीख मांगना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 1 करोड़पति पिता के बेटे थे। 500 साल पूर्व उनके पिता पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति थे, उनके पेट बेटे थे, पर उन्होंने सब कुछ त्यागा महाप्रभु की सेवा में जुड़ने के लिए। तो गौर किशोरदास बाबा जी का जो त्याग है उसी प्रकार का था। खाते थे मधुकरी लेकर या यमुना नदी की मिट्टी लेकर, और भजन के अलावा और किसी विषय में उनकी रुचि नहीं थी। 30 साल उन्होंने भजन किया वृंदावन धाम में, फिर भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी, और बरसाना में जब वो थे, बरसाना में रहकर रोज राधा कृष्ण के लिए हार बनाते थे, और वृंदावन के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की, और फिर भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी वृंदावन धाम, नवदेव धाम जाने के लिए। नवदेव धाम जैसे आप जानते हो चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान है, फिर वो गए नवदेव धाम में, और नवदेव धाम में उनका संबंध हुआ जगन्नाथ दास बाबा जी से और भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति विनोद ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति माना जाता है, और गौर किशोरदास बाबा जी ने जगन्नाथ दास बाबा जी से शिक्षा ग्रहण की, और भक्तिनाथ ठाकुर ने शुद्ध भक्ति का संदेश की स्थापना की। गोड़िया सिद्धांत जो कि गलत आदमियों के हाथ आ गया था, उन्हें ठीक रूप से प्रस्तुत किया। उनकी प्रार्थना थी कि भगवान किसको भेजें कि उनके पश्चात ये योजना आंदोलन चल सके। तो उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने भक्ति सिद्धांत जी को भेजा। तो भक्ति सिद्धांत जी का जन्म में नाम था बिमला प्रसाद, और उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, उनको वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। जब उनके दीक्षा का प्रश्न आया, उनके पिता ने दीक्षा नहीं दी, पिता ने कहा कि गौर किशोरदास बाप जी के पास जाओ दीक्षा लेने। जब भक्ति सिद्धांत जी गौर किशोरदास बाप जी के पास आए दीक्षा का निवेदन लेकर, गौर किशोरदास भौतिक दृष्टि से बिल्कुल अनपढ़ थे, नाम में लिखना नहीं जानते थे, पर उन्होंने पूरी गीता को कंठस्थ किया हुआ था, और उनका भाव सदा था एकांत में रहकर भगवान का जाप करने के लिए। तो नवदेव धाम में एक समय वो एक पब्लिक लैटरिन, आप तो जानते हो भारत में जो पब्लिक लैटरिन है कितनी बदबू आती है, तो वो पब्लिक लैटरिन में बैठकर अंदर बैठकर जाप करते थे, और बाहर से कह देते थे लोगों को ताला मार दो। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो जाप कर रहे हैं कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे। किसी ने कहा कि मैं आपके लिए भजन कुटीर बना देता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कोई आएगा नहीं तो मैं शांति से जाप कर सकूँगा, क्योंकि जिस स्थान में बदबू आती है और कोई जाना नहीं चाहता। तो गौर किशोरदास बाप जी के पास जब बाकी बिमल प्रसाद आए दीक्षा ग्रहण करने के लिए, गौर किशोरदास बाप जी ने कहा मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मैं तुम्हें दीक्षा कैसे दूँ, तुम तो इतने बड़े विद्वान हो। तो इस प्रकार बारह बार बिमला प्रसाद जी आए गौर किशोरदास बाप जी के पास ये निवेदन लेकर के दीक्षा दे दो, बारह बार उन्होंने इनकार किया। फिर जब तेरहवा बार आए और कहा आप दीक्षा नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या करूँगा, फिर उन्होंने दीक्षा दी। और जैसे आपने सुना था उनके एक ही शिष्य थे जो थे बाकी सिद्धांत सारस्वती ठाकुर। तो आज इस महान संत का तीर्थभाव तिथि है, पुष्पांजलि भी हुई थी, और हम भक्तों को गौर किशोरदास बाबा जी के चरण कमलों में प्रणाम करके उनसे ये भीख मांगनी चाहिए क्या कि हमें भक्ति की भावना प्राप्त हो और हम भी उनकी कृपा से भक्ति कर सकें। और गौर किशोरदास बाबा जी क्या पहनते थे? फटे हुए कपड़े जो बेचते देते और शमशान घाट में कपड़ा बच जाता है वो कपड़े से पहनते थे, और सारा दिन भगवान का भजन। तो हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा पर बल दिया है, और भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन कौन? जो मेरा प्रचार करता है उसे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। कई बार लोग हमारे से पूछते हैं आपके इस कर्म में कोई शॉर्टकट नहीं है? लोगों को भारत में यह आदत है सौदा करने की, है ना, बाजार में जाते हो क्या भाव है फिर सौदा करोगे। तो कई बार लोग पूछते हैं इस कर्म में कोई छोटा सा शॉर्टकट नहीं है? तो एक शॉर्टकट है, अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो प्रचार की सेवा में हमें भूलना नहीं चाहिए। आज से 50 साल पूर्व प्रभुपाद अमेरिका गए थे, भगवान का शुद्ध संदेश लेकर, वो तो राधा दामोदर मंदिर वृंदावन में निवास कर रहे थे, तो प्रभुपाद के मन में सदा यही भाव था पतितों का उद्धार करना। 70 साल की आयु में कौन निकलता है अपने घर से, खास करके विदेश जाने के लिए, तो हम तो विदेश लोग जाते हैं घूमने के लिए, पर प्रभुपाद जी में घूमने की कोई इच्छा नहीं थी। उनके मन में एक ही भाव था, कैसे पतितों का उद्धार हो। आज लोग अत्यंत दुखी हैं। अगर आप सोचते हो कि आप ज्यादा मोटरों को सड़क में देख रहे हो लोग सुखी हैं, ये भारी भूल है। देखा जाए क्लेश ही क्लेश है सारे विश्व में, समस्या विश्व की बढ़ते जा रही है। और जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं कि अगर आपको असली सुख चाहिए तो एक ही उपाय है, वो क्या है, भगवान के शिक्षा का पालन करना। आप मछली को जल के बाहर निकालोगे तो मछली जी पाएगी, और मछली को जल के बाहर निकाल कर सोने की थाली में रखो वो जी पाएगी नहीं जी पाएगी। उसी प्रकार आध्यात्मिकता के बिना कोई व्यक्ति असली संतुष्टता प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी गए 70 साल की आयु में, उन्होंने प्रचार किया। 1 साल के लिए अमेरिका में कोई रहने का ठिकाना भी नहीं था, आज इधर कल उधर, पर उनमें ये दृढ़ भाव था कि हमने भगवान के संदेश की स्थापना करनी। तो इस भाव के साथ प्रभुपाद जी चले थे, क्योंकि उनमें पवित्रता थी, भगवान ने उन्हें शक्ति दी, सफलता दी। कृष्ण शक्ति बिना नाहे सारा प्रवर्तन, चेतन चरतन विधा नाम के ग्रंथ में कहा गया है, कृष्णा की कृपा और शक्ति बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने उस वातावरण में प्रचार किया जब सब उन्हें कह रहे थे कोई आपका संदेश नहीं पालन करेगा। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो कई सन्यासी उन्हें मिलने आए। उन्होंने कहा स्वामी जी आप तो नए आए हो अमेरिका में, पर आप जो संदेश दे रहे हो कोई नहीं सुनेगा। मांस मछली नहीं खाना, शराब नहीं पीना, चाय कॉफी नहीं पीना, ये नहीं करना, कोई नहीं। पर प्रभुपाद जी घबराए नहीं, वो गए थे भगवान के संदेश, असली संदेश को पहुंचाने के लिए। तो प्रचार के माध्यम से ये संदेश फैला है। और प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा बल दिया ग्रंथों के अध्ययन और वितरण के ऊपर। प्रभुपाद जी ने लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज इन ग्रंथों का अध्ययन 4,000 से अधिक महाविद्यालयों में हो रहा है। जो भगवत गीता है उसकी प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद 70 से अधिक भाषा में हो चुका है। आज चीन भाषा में अब पूरा श्रीमद् भागवत भगवत गीता प्राप्त कर सकते हो, उर्दू भाषा में, अरेबिक भाषा में, फारसी भाषा में, पोलिश, रशियन, कोई भाषा नहीं है विश्व की जिसमें आप इन ग्रंथों को प्राप्त नहीं कर सकते। वो लोग इन ग्रंथों को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन ग्रंथों में हर प्रश्न का उत्तर है, खास करके भगवद गीता में। और पिछले 50 साल में इस्कॉन के भक्तों के द्वारा 300 करोड़ से अधिक किताबें अनेक भाषाओं में बटी हैं। तो प्रयास प्रचार के माध्यम से, प्रचार असली संदेश दोगे तो शतमान व्यक्ति जुड़ेंगे। तो हर साल जैसे आप जानते हो हम जुड़ते हैं किस सेवा में, हाँ, ग्रंथों के विषय की सेवा में। गीता जयंती के उपलक्ष हम भक्तों गीता जयंती कौन से दिन है, गीता जयंती तो गीता जयंती के उपलक्ष ये सब गीता जयंती है 21 तारीख दिसंबर को. गीता जयंती के उपलक्ष हमारे भक्त सारे विश्व में प्रयास करते हैं प्रयास करते हैं क्या अधिक से अधिक मात्रा में गीता बांटने के लिए सारे विश्व में, भारत में ही नहीं, हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में गीता बांटने के लिए. तो हर साल आप दिल्ली के भक्तों में भी बड़ा उत्साह रहता है. पिछले साल आप सबके सहयोग से आपके मंदिर ने लगभग 4.5 लाख गीता बांटी थी और आपके पंजाबी बाग के मंदिर, जैसे आप जानते हो दिल्ली में 12 मंदिर हैं, पंजाबी बाग के मंदिर ने वहाँ के भक्तों के सहयोग से लगभग 2.5 लाख गीता बांटी थी. तो पिछले साल गीता जयंती के उपलक्ष मिलकर पूरे आपके राजधानी में लगभग 7 लाख गीता हमने बांटी थी. ये गीता होटलों में रखी, ये गीता पाठशाला में बांटी, ये गीता जेलों में बांटी हमने कैदियों को, और साथ में गीता सार का भी कॉन्टेस्ट होता है. ये गीता सार का जो कॉन्टेस्ट है जिसमें लाखों विद्यार्थी भारत के जुड़ते हैं, हम उन्हें गीता का सार देते हैं और फिर हम उसके पश्चात परीक्षा लेते हैं. अजीत कृष्णा जी, अजीत गोविंद जी, और यू कैन एक्सप्लेन बेटर देन मी, ये हमारे अजीत गोविंद प्रभु हैं, आपको थोड़ी सूचना देंगे. और फिर भक्तों को परीक्षा देते हैं और जो मिलता जीतता है उसे इनाम भी देते हैं. पिछले साल या 2 साल पहले एक मुसलमान लड़के ने ये कॉन्टेस्ट जीता था, है ना, इन साउथ इंडिया, नो ही वन इन दिल्ली और साउथ इंडिया, इन बॉम्बे. तो मुसलमान लड़के कह रहे ने पूरी गीता पढ़ी. मुसलमान लड़का कह रहा था, जब मैं देखता हूँ कोई मुसलमान जब मंदिर जाता है, अपने मस्जिद जाता है, कुरान लेकर जाता है, और मैं देखता हूँ कि क्रिश्चियन लोग जब चर्च में जाते हैं बाइबल की कॉपी लेकर जाते हैं, और मैं देखता हूँ जब हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं कोई किताब साथ नहीं ले जाते. तो उसने पूरा गीता पढ़ा. तो गीता सार कॉन्टेस्ट के विषय में अजीत गोविंद प्रभु सूचना देंगे, ये उनके चार्ज हैं. तो गीता मैराथन के लिए गीता जयंती के उपलक्ष सारे भक्त प्रयास करते हैं भगवान का संदेश और गहराई से पहुंचाने के लिए. और अगर आप प्रयास करोगे तो क्या नतीजा होता है, भगवान गीता में कहते हैं जो प्रयास करते मेरी सेवा करने के लिए अगर उनमें कुछ कमी भी हो तो उसे मैं दूर कर देता हूँ. तो मैं आप सब भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस साल भी जुड़िए. इस साल कार्तिक का महीना काफी लेट तक चल रहा है और भक्तों ने गीता मैराथन का प्रयास शुरू कर दिया है. पिछले साल आप में से कितने भक्तों ने गीता मैराथन में सहयोग दिया था? मैंने कल प्रश्न पूछ लिया, आप में से कितने भक्त है पिछले साल जिन्होंने सहयोग नहीं दिया था? शर्माओ मत. तो ये सब आप सबसे निवेदन है, आप इस सेवा में जुड़िए. आखिर गीता में है क्या, भगवान का संदेश गीता यादव रूप में क्या है, भगवान का संदेश। और आप खुद देख सकते हो जैसे प्रचार बढ़ता है भक्तों की संख्या भी बढ़ती है। एक समय था आपके दिल्ली में भी छोटा मंदिर था बंगाली मार्केट में, जिसमें द्वार को 20 आदमी आते थे। आज जैसे प्रचार बढ़ा, आज आपके दिल्ली शहर में 14 मंदिर हैं। जैसे आपका ये मंदिर भरा हुआ है, इस समय हर मंदिर के में प्रोग्राम हो रहा है और हर मंदिर भरा हुआ है। कल रथ यात्रा में मेरे ख्याल से लाखों लोग आए थे। तो अगर आप प्रचार करोगे तो भगवान साथ देंगे। और भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन नित्यानंद हरिदास ठाकुर को बुलाकर कहा, नित्यानंद हरिदास घर घर जाओ, लोगों को एक संदेश दो, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। क्या था संदेश, कृष्णा का नाम लो, कृष्णा की भजन करो, कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ। तो मैं आप भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब इस मैराथन में जुड़िए। सब जुड़ोगे मैराथन में, सब कौन है इंचार्ज, तो आप सब जुड़ोगे बुक मैराथन में, पक्का। भगवान की कृपा चाहिए आपको कि नहीं, कि आप लोगों को लगता है हमें कृपा की जरूरत नहीं है, है जरूरत, प्रयास करोगे तो। ये हमारे ऋषि कुमार प्रभु, आप इनसे मिलिए और ये आपको सहयोग देंगे आपको जोड़ने के साथ। मेरे ख्याल से आप में से कई भक्तों जुड़े हुए हो भक्तों के साथ, पर जो नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, जिनके पास सूचना नहीं कैसे जुड़े, उनसे निवेदन है कि आप ऋषि कुमार प्रभु के साथ जुड़िए। हाँ, अब मैं निवेदन करूँगा हमारे अजीत गोविंद प्रभु से, आपको गीता सार के विषय में सूचना दें। आप बड़े खुश हो गए कि गीता सार कॉन्टेस्ट में पूरे भारत में लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं, जैसे आपके दिल्ली में हो रहा है पूरे भारत में हम करते हैं और लाखों विद्यार्थी जुड़ते हैं। तो कई तरीके हैं जिनके द्वारा आप ग्रंथों को बांट सकते हो। माने कई भक्त हैं जो मानोगे नहीं आप, जो अपने बैग में किताबों को उठाते हैं, वो दफ्तर जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, जब भी मौका मिले किताब दे देते हैं किसी को। और लाइब्रेरीज में कई फैक्ट्री के मालिक गीता लेते हैं। हमारा एक भक्त है यहाँ दिल्ली में, जो कॉर्पोरेट्स में जाकर उनको शिक्षा देता है कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाने के लिए, तो वो लेते हैं गीता अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए। तो कई साधन हैं गीता बांटने के लिए। अगर आपके मन में ये भावना रहेगी हमने भगवान के संदेश को आगे बढ़ाना है, भगवान सुविधा देंगे। प्रयास करोगे पक्का, सबको भगवान की कृपा चाहिए, ठीक है। आप अपने दफ्तरों में बांट सकते हो, अपने मित्रों से बांट सकते हो, अपने मित्रों को कह सकते हो, आप अपने रिश्तेदारों को बांटो। गीता से ज्यादा क्या ऊंचा प्रेजेंट है। जब हमारे मोदी जी राष्ट्र प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने काफी गीता बांटी लोगों को, और उसके बाद हमने पढ़ना अखबार में बंद कर दिया, नहीं सुन। तो गीता जो है इसका संदेश जो है पूरे मानस मन में, हमें केवल गीता को बांटना नहीं गीता को पढ़ना भी है। आप ऐसे कितने भक्त हो जो गीता को रोज पढ़ते हो, तो जो नहीं भी पढ़ते उन्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इसको कि मंदिरों में रोज सुबह भगवतम की क्लास होती है, शाम को गीता की, आप पढ़िए और बांटिए। ओके, हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। For more information, please visit gkgoswami.com.